लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। फॉर एग्जाम्पल हजरत वही पत्थर है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा तो हम भी उसको चूमते हैं। हतीम बारा काबा का दरवाजा जो है और हज असद के दरमियान चंद फुट की जो जगह है उसे हतीम कहते हैं, मुल्तजिम कहते हैं। तो उस मुल्तजिम से चिमटना ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमटे और ऐसे ही उन्होंने कहा कि जिसका मफहूम है कि ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला से चिमटता, ऐसे ही इंसान की फीलिंग हो जैसे अल्लाह ताला से चिमट रहा हूं, अल्लाह ताला से गले मिल रहा हूं। तो मुल्तजिम पे चिमटना साबित है। इसी तरह जो तवाफ करें अगर एंटी क्लॉकवाइज तो हजे अस्वस्थ पिछला जो कोना है खाना काबा के चार कोने हैं क्योंकि जो स्क्वायर है ऑलमोस्ट, तो उसका जो पिछला कोना है उसको रुकने यमानी कहते हैं। तो उसको भी छूना दोनों हाथों से या दाएं हाथ से तवाफ के दौरान ये भी छूना, और अगर ना मौका मिले तो जरूरी नहीं है। इसके अलावा खाना काबा से कहीं चिमटना कहीं उसको बोसा देना ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए कई बार हम देखते भी हैं कि मना कर रहे होते हैं कि इधर ना चिमटे क्योंकि वो सुन्नत से साबित है। सिर्फ तीन जगह ऐसी हैं जहां से चिमटना और जहां कुछ जिसको जिसके आदाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए कि कैसे उसको उसको अदब दिया जाता है, चूम के उससे लिपट के या उसको हाथ लगा के, क्योंकि खाना काबा की सारी फजीलत उसकी तजलियात की वजह से है जो कि उसके अंदर वारिस हो रही या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अदब एहतराम हमें बता दिया। अगर हम खुद से शो ऑफ करने की कोशिश करें अपनी मोहब्बत को दूसरे हिस्सों को चूम के गले लिपट के तो एक जज्बा तो है लेकिन हम सही डायरेक्शन नहीं दे रहे। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि हमें अपनी सारी मोहब्बत जो अल्लाह से हमें है जब तक उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर या उस तरीके से उसका इजहार नहीं होगा अल्लाह के हम कबूल नहीं होगा। देखिए जज्बा होता है, अब मैं उस जज्बे के अंदर हद से आगे बढ़ जाऊं तब भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। तो ये भी वहां हमें बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका उस जज्बे के इजहार को बताया, जब तक वो तरीका नहीं आएगा वो जज्बा भी कबूल नहीं होगा। तो ये सारे मैसेजेस हमें वहां मिलते हैं। तो खाना काबा जब इंसान जाता है उम्रे या हज के लिए तो खाना काबा की एंट्रेंस अब देखिए अल्लाह से मुलाकात है। यहां से हम ये बात तय कर दी कि अल्लाह की ज्यादा तो उसकी मुलाकात शामिल है। अब खाना काबा वो जगह है जहां अल्लाह ताला की तजलियात होता रही है, तजलियात वारिद हो रही है। तो वहां पे जब तजलियात वारिद हो रही है तो वो खाना काबा हमारा ऑब्जेक्टिव। अब वहां जाके जो शख्स जाएगा वहां पे तो सबसे पहले वहां जाके सुन्नत है कि तवाफ करने से पहले वहां हज असद को बोसा देना। तो हदीस में आता है ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला से हाथ मिलाना, मुसाफा करना और बोसा देना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला के हाथ को चूम लेना। तो यही कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर तवाफ करना ये अपनी मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह ताला मुझे आपसे मोहब्बत है, उसका इजहार। और फिर मुल्तजिम से चिमटना ये ऐसे है जैसे अल्लाह ताला से बगलगीर होना, अल्लाह ताला से गले मिलना जिस तरह इंसान मौनका करता है किसी से मिलकर। तो ये सारी कैफियात है। और फिर उसके बाद सही करना और फिर बाल कटवा के उम्रे से निकल आना। तो ये कुछ मैंने ब्रीफली बताई जो मोटिव्स हैं हज और उम्रे के, मेनली मौत की याद दहानी और दूसरे दर्जे में या दूसरे उसकी अल्लाह की मोहब्बत की याद दहानी उसके इजहार का एक तरीका है। इस फिलॉसफी के बाद अब हज के तरीके का आगाज करते हैं कि हज किया कैसे जाता है, जिसमें उम्रे का तरीका बिल्कुल बहुत आ जाएगा उसके उसी के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये जहन में होनी चाहिए कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अलिल आलमीन। यानी लोगों पे अल्लाह का हक है कि बैतुल्लाह का हज करें, जो उस घर तक आने की कुदरत रखता हो, फिर जो कुफर करे यानी बावजूद कुदरत के ना आए तो वो अपना ही नुकसान करता है। अल्लाह तो बेनियाज है सब जहान वालों से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये हक है मेरा लोगों पे तो हज करे, ये हक है अल्लाह ताला का, जो नहीं पूरा करेगा अल्लाह ताला उसके वर्ड की अमन कफर आ, जो कुफर करता है तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए दूसरी रवायात में मिलता है कि जो हज ना करे इस्तेकात के बावजूद और फौत हो जाए तो हदीस में आता है कि वो यानी इस्लाम पे उसकी मौत नहीं है, वो या यहूदी होके मरा है या ईसाई होके मरा है, मुसलमान नहीं। मफहूम है रवायात। तो हज को एक अहमियत देना। अब किस पे ये फर्ज है, इस्तेकात से क्या मुराद है? तो उसमें ये है कि जिस शख्स के पास भी इस कदर माल हो कि वो हज का एक सफर कर सके, यानी जहां ऑब्वियसली जहां से वो उसका आगाज करेगा वहीं से उस बात हो रही है, जो सऊदी अरब में रहता है उसको वहां से, जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको वहां से, या जो भी जिस कंट्री में रह रहा है वहां से उस सफर को पूरा कर सके। और कब उसके पास इतना माल हो जाए कि शवाल आ जाए, यानी उस साल का शवाल आ गया उसके पास इतना माल मौजूद है जिसको हज फर्ज हो गया, क्यों हज के महीने शवाल से शुरू होते। और ये भी जहन में रहे, आमतौर पे पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से पैकेजेस में मदीना तैयबा का सफर उसके अंदर शामिल कर लिया जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तो सऊदी में रह रहे हैं तो उसे सिर्फ हज की बात की जाएगी, मदीना मुनव्वरा जाने की उसके पैसों की बात नहीं हो रही। फिर ये हज के 5 दिन के उसके पूरे हो जाए, खर्चे आना जाना सारा आसानी से हो जाए, ये बात की जा रही कि इतना खर्चा जिसके बाद शवाल पहली शवाल को हो गया, उसके पास मौजूद है इतने पैसे तो उस पर हज फर्ज हो। अब अगर वो नहीं करता तो वो गुनहगार हो, और उस पर फौरी फर्ज है यानी उसी साल का हज। पोस्टपोन करेगा तो पोस्टपोन करने का गुनाह है, कहे कि नहीं अगले साल कर लूंगा, उसे अगले साल पोस्टपोन करने का गुनाह होगा। और तो वो जब कर लेगा उसका फरीदा अदा हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसने पोस्टपोन कर दिया कि नेक्स्ट ईयर में कर लूंगा तो वो गुनहगार होगा। क्यों उसने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जैसे इस्तेआत हो उस पर हज करना फर्ज। और अगर खुदा ना खास्ता उसका माल जाया हो गया और आइंदा उसे मौका नहीं मिला हज करने का माल जाया होने की वजह से, तो उसकी फर्जियत खत्म नहीं होगी। वो ये कह के आपको मैं माल नहीं पिछले साल था तो क्यों पिछले साल नहीं किया, अब उस पर सारी उम्र फर्ज रहेगा, उसे जरूरी है कि उस जब यानी कि हज करे। अब ये है फर्ज होने की डेफिनेशन। कहने का मतलब ये है कि कई बार कहा जाता है कि नहीं माल इकट्ठा कर रहे हैं कि बच्चों की शादियां करनी है, माल इकट्ठा कर रहे हैं घर बनाना है, ये कहीं पे भी इस कैटेगरी में शामिल नहीं है या इसको इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं है कि जब हज की बात की जा रही, क्योंकि वो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान की वक्त आने पर, क्योंकि इंसान को फर्ज नहीं कर दिएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला नहीं है। क्योंकि इंसान ने सादगी से कोई शादी करता है क्योंकि इतना खर्चा नहीं होता, वो तो हमने खर्चे बढ़ाए हुए हैं उस सारी रस्म रिवाज की वजह से कि जो हमारे माशरे के अंदर आए थे, वो हमने मुश्किल बना दिए। वरना तो शादी बजाते खुद कोई खर्चा नहीं डिमांड नहीं करती, वो तो दो बोल का नाम है, वो तो बगैर खर्चे की हो जाती है, थोड़ा सा हक पर इंसान दूसरे को दे सकता है, वो तो हमने उसको मुश्किल बना दिए खर्चे डालता। तो ये कहना कि बच्चों की शादियों के लिए खर्चा है इसलिए, तो वो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सादगी से भी कर सकता है। और इसी तरह घर बनाना है, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो समझना चाहिए कि घर बनाना तो मुझ पर फर्ज नहीं है, वो एक वक्त की जरूरत है कि जब पैसा होगा बन जाएगा, ये तो मुझ पर जरूरी है। यानी मौत आ गई तो इसका पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा तुमने घर बनाया था कि नहीं बनाया था। तो इसलिए दीन की बातों को सीख लेना चाहिए कि ग्रेड कर सकूं कि इस वक्त मेरी तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दी, क्योंकि आमतौर पे ये बहुत कॉमन वजह बताई जाती है हज को पोस्टपोन करने के लिए, बल्कि शौक होते, देखिए शौक वाले को तो कोई कोई जरूरत ही नहीं होती इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, वो तो बहाने ढूंढते कि नहीं मैं शायद मुझे हज फर्ज हो चुका हो, उसे बल्कि रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी अभी तुम पे नहीं फर्ज हुआ, उसे तो रोकना पड़ता है कि अभी तुम पे फर्ज नहीं हुआ ना, ये उसे मोटिवेट करना पड़ रहा हो कि नहीं कर लो इस बार हज कि जी तुम्हारे पे इतना माल आ चुका है। तो ये भी अल्लाह ताला देख लेते हैं किसके अंदर ज्यादा शौक है, और उतना ही उसका अजर ज्यादा दिया जाता है जिसको ज्यादा शौक है।